अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्या करो, मेरा दर्शन करने से पूर्व इस भौतिक संसार का दर्शन करना सीखो। दर्शन के दो अर्थ हैं, दर्शन का अर्थ है देखना और दर्शन का अर्थ है फिलॉसफी। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी को समझना। तो उस प्रकार से वास्तव में यह जो संसार है एक विषमय वृक्ष के समान उसकी तुलना की गई है और कहते हैं कि संसार विष वृक्ष से दो फले ही अमृतोपमे। लेकिन ये विषमय सागर, विष क्या है, यहाँ नाना प्रकार के कष्ट है, चिंताएं हैं, एंग्जाइटीज हैं, ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब क्या है, विषमय है। वास्तव में जगत में हमारे संबंध शुरुआत में जो व्यक्ति स्थापित करता है एक दूसरे से या कोई भी इस भौतिक जगत की जो वस्तु है, शुरुआत में हमें अमृत के समान लगती है, बहुत आनंद सुख आदि प्रदान करती है। लेकिन इस भौतिक जगत का नियम ही है कि कुछ समय के बाद वो जो वस्तु है, वो जो आनंद उस चीज से हमें प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे निरस होने लगता है और उससे हमें लगता है कि कब इससे छुटकारा हो जाए, चाहे वो हमारे भौतिक संबंध क्यों ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो जगत, हाँ, ये एक विषमय वृक्ष है। लेकिन इस विषमय वृक्ष में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, द्वे फले ही अमृतोपमे। शास्त्र कहते हैं कि दो फल लगे हुए हैं वो अमृत के समान है। बाकी जितने भी फल हम चखना चाह रहे हैं, दिन रात पागल के भांति एक जैसे सुअर है, उसको दूर से जो गंध दिखता है खाने के लिए दौड़ पड़ता है, कुत्ते को दूर से हड्डी दिखती है तो वो भागता है। तो उसी प्रकार से इस जगत में व्यक्ति सुबह उठता है और या वो सुअर या कुत्ते के भांति भौतिक आनंद के लिए, उपभोग के लिए, एंजॉयमेंट के लिए दौड़ता है। लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं कि कुछ ही क्षणों में ये जो सुख उसे नजर आ रहा है वो अशाश्वत है, टेम्पररी सुख उसे मिलने वाला है उस वस्तु से। तो लेकिन इस भौतिक जगत के बाकी जितने भी चीजें हैं उनका हम आनंद उपभोग करना चाहते हैं तो वह हमें विष के समान परिणाम देते हैं हमारे जीवन में। लेकिन शास्त्र कहते हैं, लेकिन आप सीखो, समझो, जानो कि संसार में भी दो जो फल है वो बहुत ही अमृत के समान है। तो वो क्या है, कदाचित केशवे भक्ति। पहला क्या है, कदाचित केशवे भक्ति। केशव, केशव कौन है, कौन है, आपको जोर से बोलना है, कौन है केशव, कृष्ण। कदाचित केशवे भक्तिर तद तद भक्ताम समागम। दो जो फल है वह अमृत के समान है, नेक्टर है। नेक्टर का तो हमने आस्वादन नहीं किया, किसी ने किया है नहीं, लेकिन वास्तव में जब भक्ति भगवत भक्ति में लगता है और भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में मग्न होता है तो वह अमृत से भी अधिक जो मिठास है वह अनुभव करता है। तो पहला फल शास्त्र कहते हैं कि कदाचित केशवे भक्ति, केशव जो भगवान कृष्ण है। हाँ, केशव क्यों नाम पड़ा, क्योंकि भगवान ने केशी नाम के असुर को मारा था ब्रज में, वृंदावन में। कदाचित केशवे भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति, और दूसरा है तद भक्ताम समागम, उनके जो भक्त है उनका एसोसिएशन, संग। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत में बाकी जितनी मर्जी हमारे पास सुविधाएं हो, संपन्नताएं हो, हमारे पास बड़ा नाम हो, फेम हो, सौंदर्य आदि हो, नॉलेज हो, लेकिन वो सारा परिणाम में हमारा जो जीवन है वो विषमय करने वाला है। क्या करने वाला है, विषमय करने वाला है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इन दो फलों के संपर्क में आता है, इन दो फलों को चखने का प्रयास करता है, इनके वो अग्रसर होता है, तो उसका जीवन अमृतमय बन जाता है। कौन ने कौन चाहता है अमृतमय जीवन, आप चाहते हैं कि विषमय जीवन चाहते हैं, अमृतमय जीवन। इसलिए शास्त्र कहते प्राप्य उस उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधता, मतलब अभी अभी उठो, जागो, अभी आपके पास मनुष्य का जीवन मिला है और आपको समझना होगा कि इससे मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए शास्त्र ये चीज पर जोर देते हैं कि ये दो जो फल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप लोग भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली है आप लोग बताइए, इन दो के संपर्क में आप आए हो। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जो जीवन है नृदेह माध्यम सुलभम सुकल्पम। शास्त्र कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये वैसे बहुत अधिक दुर्लभ है, रेयरली अचीव्ड, रेयरली हमें इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन ये तो हजारों हजारों लोगों के पास मिला है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन से भी अत्यधिक दुर्लभ क्या चीज है, भगवान के भक्तों के संपर्क में आना। बस नहीं तो जब हम इन दो चीजों के संपर्क में नहीं आते तो व्यक्ति का जो जीवन है पशुवत है, पशु भी नराना। महाभारत कहता है कि वो मनुष्य नहीं है, हाँ वो क्या है, एक पशु के भांति उसका जो जीवन है। इसलिए शास्त्र एक चीज पर जोर देते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि व्यक्ति को भगवान के प्रति जो भक्ति है उसका तभी हमें अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसकी महिमा तभी हमें पता चल सकती है, उस ओर तभी हमारा झुका हो सकता है जब हम पहले किसके संपर्क में आए, भक्तों के। आप यहां कैसे किसके संपर्क में आने से आए, भक्तों के संपर्क से। तो उसी प्रकार से शास्त्र इस पर जोर देते हैं कि वास्तव में कि जो साधु संग है भगवान के भक्तों का जो एसोसिएशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों के संपर्क में आना। क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के भक्तों के पास वो सामर्थ्य है जो भगवान के पास भी नहीं है। भगवान के भक्त क्या कर सकते हैं, कृष्ण हमें प्रदान कर सकते हैं। कौन प्रदान कर सकते हैं, भक्त कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आछे। शास्त्र में वर्णन आता है कि हे महान भक्त, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है, शक्ति है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता है, भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, मैं भगवान मेरे भक्तों के हृदय में निवास करता हूं और भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम जानते हैं भागवतम से कि कितना महत्वपूर्ण है कि जो भगवान का जो भक्त है वो होना या भगवान के भक्तों के संपर्क में आना, क्योंकि उनके पास कृष्ण देने का सामर्थ्य है जो स्वयं कृष्ण के पास भी नहीं है। कृष्ण भी अपने आप को नहीं दे सकते, कृष्ण भी अपने आप किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा का वर्षाव नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं है, उनके शरणागत नहीं। इसलिए आदि पुराण में अर्जुन को भगवान कहते कि हे अर्जुन, ओ कई लोग कहते कि हाँ मैं आपका भक्त हूं, कहते कृष्ण कहते कि नहीं नहीं वो मेरा भक्त नहीं है। उस व्यक्ति को ये सीखना होगा कि वो मेरे भक्तों का भक्त है तो वो मेरा भक्त है, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं। तो वास्तव में इसको भक्त, तो भक्त का मतलब क्या है, या साधु, साधु का मतलब ये नहीं कि कोई वस्त्र आदि धारण करता है वेशभूषा तो वो साधु नहीं है। साधु का मतलब है मनोवृत्ति होनी चाहिए उसकी, साधु की क्या होनी चाहिए, मनोवृत्ति, एटीट्यूड, चेतना, वो वास्तव में साधु है। तो वो फिर चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बूढ़ा है, जवान है, वो कौन हो सकता है, साधु हो सकता है। क्योंकि साधु के लक्षण शास्त्र वर्णन करते हैं। साधु के लक्षण क्या है, साधु के लक्षण ये नहीं कि लंबी जटाएं रखी है और लाल वस्त्र धारण आदि किए हैं, सारे जगत का त्याग कर दिया है। साधु का मतलब ही है जो वास्तव में जिनमें गुण हो, भगवत भक्ति के जो गुण है, जिसका वर्णन शास्त्रों में भागवतम में किया गया है, जहां कहते हैं तितिक्ष्वाह कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। तो साधु या भक्त का मतलब ही है सबसे पहले उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण है, तितिक्ष्वाह, तितिक्ष्वाह का मतलब है सहनशीलता। कौन सा गुण, सहनशीलता। इस संसार में हम देखते हैं जीवन में ट्रबल्स क्यों हैं, पारिवारिक संबंध विच्छेद क्यों हो जाते हैं, इस गुण की कमी है। कौन से गुण की? स्त्री कहती है कि मैं आपके टॉलरेट करने के लिए यही नहीं हूं, घर में नहीं हूं। पुरुष कहता है मैं तुम्हें टॉलरेट करने के लिए शादी नहीं किया हूं। या ऑफिस में हम टॉलरेट या सहन नहीं कर पाते। तो वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, सहनशीलता। और दूसरा गुण क्या है? कारुणिका। तो हम विशेष रूप से जो कारुणिका है, कारुणिका मतलब है कंपैशन, दया। क्या है? दया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि वास्तव में साधु का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है दया। दया ही सर्वभूतेषु, सारे जीवों के प्रति दया। सर्वदेहिना, सर्वदेहिना मतलब कोई भी जीव हो उसके प्रति उसके हृदय में दया की भावना भरी होती है। वो देना चाहता है, वो देखता है कि इस संसार में जो जीव है कष्ट प्राप्त करने का या इस जगत में बहुत अधिक परेशानी का एकमेव कारण है कि इनके जीवन में एक ही चीज की कमी है, और वो क्या है? भगवत भक्ति की, कृष्ण की कमी है। अभी इस संसार में हजारों लोगों को देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, नेम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अशांति है। घर में जल्लोष, जल्लोष नहीं क्या कहेंगे, आक्रोश है, ट्रबल्स है, समस्याएं हैं। क्यों? बल्कि वो सोच रहे कि नहीं नहीं, ये चीज होने के कारण ये ठीक करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस भौतिक जगत में आप जितनी मर्जी चीजें ठीक करते रहो, लेकिन पूर्णता असंभव है। क्योंकि पूर्णता तभी संभव है जब आप अपने जीवन में कृष्ण को प्लस करते हो। क्या करते हो? कृष्ण को ऐड करते हो लाइफ में, तभी वास्तव में पूर्णता संभव है। तो इसलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, साधुगण होते हैं, वो जानते हैं कि इस जगत में एकमेव कारण है जीवों के दुखों का कि इनके जीवन में कौन नहीं है? कृष्ण नहीं है। और वास्तव में कृष्ण है लाइफ में, भगवत भक्ति है, भगवत सेवा में हम जुड़े हैं, तो सब कुछ है। पांडवों के जीवन से हम देखते हैं, कौरवों ने उनके साथ उनको वनवास के लिए भेजा, और बाद में जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा है, अर्जुन तुम जाओ द्वारका चले जाओ, जहां द्वारका देश है, कृष्ण है, और उनको निवेदन करो। तो ये जो कौरव आजादी है, ये सारे भारतवर्ष के राजाओं को अपनी ओर खींच रहे थे, अपने साइड से रख रहे थे। लेकिन ये जो पांडवाज है, पांडव है, जब अर्जुन चले गए वहां, तो वहां देखा कि कृष्ण सो रहे थे। उनसे पहले कौन पहुंचा था? दुर्योधन। वो जाके सर के पास बैठ गया, सर जहां भगवान सो रहे हैं, सर के पास वहां जाकर बैठता है। और जो अर्जुन है, बड़े ही विनम्रता से, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान के भक्तों का जो स्थान है वो चरणों के पास है। सारंगाना पदाम्बुजम, सारंग मीन्स भगवान के भक्त, उनका स्थान भगवान के चरणों में है। तो अर्जुन जाके बैठता है, तो भगवान सो रहे थे, जैसे ही उठे तो कृष्ण आनंद अनुभव करेंगे क्या? उठते ही अभक्त का दर्शन करने में करेंगे? आप उठते ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना चाहोगे जो आपसे ईर्ष्या या द्वेष करता है? चाहोगे? नहीं है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कृष्ण जैसे उठे तो उनका दृष्टिपात किस पर हुआ? अर्जुन के ऊपर। अर्जुन बैठे थे वहां और कृष्ण प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे और अर्जुन से बात करना शुरू किया। अभी तक किसको ने देखा? कृष्ण ने दुर्योधन को। क्या कर रहे हो कृष्ण? मैं कब से बैठा हूँ, पहले ही वेटिंग लिस्ट में, उससे पहले आया हूं मैं। जैसे ट्रेन टिकट निकलने जाओ तो बीच में घुसता है, पीछे वाले चिल्लाते रहते हैं मैं पहले आया था। हाँ, लेकिन यहाँ दुर्योधन, हाँ कृष्ण पहले उसको भी देख सकते थे, हाँ लेकिन नहीं। कृष्णा बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं अपने भक्तों को देखने के लिए, और भक्त भी सर्वाधिक आनंद अनुभव करते हैं भगवान को देखने के लिए। यह है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस, इंग्लिश में श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस। जनरली लोग कहते हैं डिवोशन, नहीं, डिवोशनल सर्विस में सेवा होनी चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी सेवा किए बिना आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। पत्नी यदि पति से प्रेम करती है, वो केवल चिल्लाती रहे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और बेचारा पूरा दिन मेहनत करके पसीना निकालते हुए ऑफिस से आ रहा है, मेट्रो से आ रहा है, डीटीसी बस से आ रहा है, अपनी कार से आ रहा है, इतना ट्रैफिक में है, इतने वर्कलोड है, टेंशन है, घर आ रहा है, और उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, और पत्नी केवल दरवाजे में चिल्ला रही है आई लव यू आई लव यू, कह रहे जाओ खाना पकाओ कपड़े दो, हाँ, तो ये प्रेम है? नहीं है। प्रेम का मतलब है एक्टिविटी, सेवा, सर्विस। हाँ, किस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो तो उसकी क्या करते हो? आप सेवा करते हो। हाँ, तो वो सिम्टम है, लक्षण है, प्रेम का लक्षण है। तो उसी प्रकार से ये भक्ति है। तो जब अर्जुन भगवान से बातें कर रहे थे, दुर्योधन चिल्ला रहा था और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण मैं पहले आया। हाँ हाँ बोलो। शास्त्र कहते कि जो छोटे हैं वो जब कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले उनकी जो है वो इच्छाएं पूर्ति करनी चाहिए। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन बताओ। पहले तो दुर्योधन ने ही मांगा, क्या चाहिए मुझे? हे कृष्ण मुझे आपकी जो नारायणी सेना चाहिए। भगवान की जो सेना थी, सोल्जर्स, नारायणी सेना, ये जगत में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो भगवान की सेना को, यदुवंशियों की जो सेना है उसको खत्म कर सकती। किसी का भी सामर्थ्य नहीं था। दुर्योधन ने किसको नहीं मांगा? हाँ, कृष्ण को नहीं मांगा। हमारी स्थिति बिल्कुल दुर्योधन के समान है, इसलिए तो ट्रबल है। सब कुछ होने के बाद भी लोगों के जीवन में अशांति, तो क्या कारण है? यही है, उन्होंने जीवन में नहीं सीखा कि कृष्ण को लाइफ में ऐड करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान की शक्ति के प्रति आकर्षण, शक्ति तो है उनका, एनर्जी, जो भी सोल्जर आदि है, लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण ने कहा देखो दो चीजें उन्होंने कही कि मैं एक और हूं, मेरी सेना है, और मैं तो युद्ध में जाऊंगा तो शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चूज करो। अर्जुन ने कहा क्या बेकार है, कृष्ण क्या है, लाइफ में नीड ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि नहीं? हमें लगता है नहीं, नहीं अभी लाइफ आवश्यकता ही नहीं। क्या आवश्यकता है भगवद गीता आदि की, कृष्ण के हमारे जीवन में? हाँ, इनके बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन पता नहीं व्यक्ति को आगे कितने ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा। तो दुर्योधन की ये मेंटेलिटी थी। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, ये कृष्ण तो कोई शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे, हमें तो बस ठीक है, हमें तो आपकी सेना दे दो, सब कुछ बाकी चीजें दे दो। लेकिन अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, शास्त्रों में सुमेधा ये शब्द यूज किया है। मेधा का मतलब है बुद्धि, सु मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला है, सर्वोत्कृष्ट बुद्धि वाला वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में कृष्ण को चूज करता है। तो अर्जुन वैसे थे। अर्जुन ने कहा कि आप चाहे शस्त्र उठाए या ना उठाए, आपके पास कोई आपके साथ हो या ना हो, हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल आप चाहिए कृष्ण। तो यह है, और फिर यही तो हम सीखते हैं। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? सारी चीजें हुई। हाँ, और भगवद गीता के आखिरी में भी आप पढ़ते हैं आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र प्रार्थुर धनुर्धरा तत्र श्री विजय ध्रुवा नितिर्मतिर ममः। भगवान के वहां सारी चीजें हैं, जहां अर्जुन है, जहां भगवान के भक्त है, जहां भगवान है, वहां सब कुछ है, विजय है, ऐश्वर्य है, नीति, सब कुछ है। तो इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है, हाँ, ये जानना कि कृष्ण हमारे जीवन में सबसे अधिक आवश्यक चीज है। तो यदि हम अपने जीवन में भगवान को या भगवत सेवा को नहीं स्वीकारते तो वास्तव में हमारा जो जीवन है वो पशु से बेटर नहीं है। मैं भी हमने सूट बूट टाई हाँ वस्त्र आदि बहुत अच्छे से धारण किए होंगे, लेकिन हम तो पशु से भी गए गुजरे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि हमारा जो अनुराग है भगवान के लिए नहीं है। और फिर फाइनली ये चीज का हमें पश्चाताप करना पड़ेगा मृत्यु के समय में। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपने जीवन में धारण नहीं करता, मेरी सेवा में प्रयुक्त नहीं होता, उस व्यक्ति के पास भी मैं जाता हूँ, उस व्यक्ति का भी मैं आलिंगन करता हूँ, लेकिन दूसरे रूप में। मृत्यु सर्वहरशाहम, भगवान कहते गीता में मृत्यु के रूप में मैं उस व्यक्ति का आलिंगन करता हूँ और उसकी सारी चीजों का हरण करता हूँ, तब जो पीड़ा है उसका उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो साधुगण है, जो भक्तगण है, वो जानते हैं कृष्ण कितने महत्वपूर्ण है लाइफ में, और वो जानते हैं कि ये जीवों के दुखों का एकमेव कारण है कि उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन में नहीं डाला है, इसलिए उनका जो हृदय है दुखी होता है। इसलिए इस भौतिक संसार का जो व्यक्ति है उसकी स्थिति कैसी है? पर दुखी दुखी। पड़ोसी का अच्छा है दुख, पर पड़ोसी का कुछ बुरा हो जाए बहुत खुश होता हूं, है कि नहीं? पर दुखी, पर दुखी सुखी, सॉरी, दूसरे का दुख हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों का जीवन क्या है, एटीट्यूड क्या है? हाँ, उनका एटीट्यूड है कि पर दुखी दुखी। वो जानते हैं कि संसार में जीव दुखी हैं, हाँ, लेकिन भौतिक जगत का बिल्कुल उल्टा है। हाँ, एक बार एक व्यक्ति बहुत पूजा अर्चना कर रहा था और उसने भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान, ये भौतिकवादी व्यक्ति का उदाहरण है कि ये भगवान आप मुझे आशीर्वाद दो, जो भी मैं मांगूंगा वो प्राप्त हो जाए। तदास्तु। तो लेकिन भगवान ने कहा तुम एक चीज मांगोगे ना, तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगी। क्या होगा? पड़ोसी को डबल मिलेगी। चलो चलेगा क्या? मुझे तो मिलेगा ना एक, ठीक है। तो इसने घर जाते पहले कहा, घर तो बड़ा टूटा फूटा है भगवान, बड़ा सा कोठी, बड़ा सा घर, तो इसका तो बड़ा घर हो गया, लेकिन पड़ोसी के उधर देखा अपने घर से दो घर बन गए उसके। चलो ठीक है। तो ऐसी सुविधाओं को मांगते मांगते भगवान दो, एक मर्सिडीज कार पड़ोसी के घर के सामने दो। ऐसे कई डिमांड्स हो रही थी और जो डिमांड मतलब बता दे गया, देखा डबल हो रहा है वहां सब कुछ डबल। तो फिर उसने सोचा मैंने तपस्या की, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये पड़ोसी क्या कर रहा है? फ्री का माल उठा रहा है, आराम से उसे सब कुछ मिल रहा है, वो भी डबल मिल रहा है। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, क्या हो जाए? मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की कितनी आंखें? तो कहने का तात्पर्य है कि ये भौतिकतावादी व्यक्ति का मनोवृत्ति है जो भगवत भक्त नहीं है, क्योंकि वो अधिक आनंदित होते हैं जब वो देखते हैं कि उस व्यक्ति का कष्ट मिल रहा है अधिक। लेकिन भगवान के भक्त दुखी होते हैं, पर दुखी दुखी, ये उनका स्वभाव है। इसी को शास्त्र करुणा कहते हैं। तो ये जो दया की जो भावना है, ये साधु या जो भगवान के भक्त है, चाहे जो मर्जी उनके जीवन में विपदाएं आए फिर भी उसको त्यागते नहीं है। आपने देखा ना, एक महाराष्ट्र में एक संत थे एकनाथ, महान भक्त हुए। तो वो जब जल में गए स्नान करने के लिए गोदावरी नदी में, तो देखा कि वहां बिच्छू पानी में डूबी रहा था, उसको क्या कर रहे थे? उठा रहे थे और वो डंक मार रहा था, फिर वो नीचे गिर रहा था पानी में डूबने वाला, फिर उसको उठा रहे थे। और ये सब चीजें 7-8 बार हुई। एक व्यक्ति किनारे में बैठ के देख रहा था और जब वो उठा के लाए, क्या कर रहे हो आप? कि आपको डंक मार रहा है, बार बार आप उसको उठा रहे हो ला रहे हो। उसने कहा जिस प्रकार से बिच्छू का नेचर है, इसके खून खून में, जैसे हम कहते ना इसके खून में क्या, आई डोंट नो एग्जांपल मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसके खून में है या इसका नेचर है, स्वभाव है डंक मारना, या अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, उसी प्रकार से साधु या भक्त का क्या स्वभाव है? दया का प्रदर्शन करना, कंपैशन। हाँ, वो कभी नहीं उनके हृदय से जा नहीं सकते, ये उनका नेचर है, स्ट्रांग नेचर है। इसलिए हम देखते हैं कि एक महान आचार्य हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर, 500 साल पहले वो मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन कृष्ण के महान भक्त बन गए। मुस्लिम जो शासक थे काजी आदि, उन्होंने उनको 22 बाजारों में ले जाकर कोड़ों से पीटा। कृष्ण के महान भक्त थे, वो यदि कुछ कहते तो उनका विनाश उसी समय हो जाता, लेकिन कृष्ण को वो यही प्रार्थना करते कि हे कृष्ण, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्या करो, क्षमा करो। भगवान उस पिता के समान है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है उनका ये स्वभाव है। साधु का स्वभाव क्या है? पर दुखी दुखी, दूसरों पर दया की जो भावना है वो प्रकट करना। इसलिए दो प्रकार के साधु होते हैं, शास्त्र में वर्णन आया है। कितने प्रकार के साधु हैं? दो प्रकार के हैं। प्रायेण ते देव मुनया स्वविमुक्ति कामः मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठः। एक प्रकार के साधु है, उनको टेक्निकल भाषा में, शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है भजनानंदी, जो बस हिमालय आदि। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनया स्वविमुक्ति कामः, मतलब ऐसे ऐसे कई साधु महात्मा गण है, संत गण है, वो क्या करते हैं, अपने ही मुक्ति की, अपने ही जगत से, कष्टों से मुक्त होने के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मौनम चरन्ति विजने, मौन व्रत आदि धारण करके हिमालयाज जंगलों आदि में निवास करते हैं। न परार्थ निष्ठा, उनका ये इच्छा ही नहीं होता दूसरे जीवों का उत्थान करने की, दूसरों को भी लाभ प्रदान करने की उनके अंदर वो इच्छा नहीं होती। वो केवल अपने ही इसमें मग्न रहते हैं, अपना ही उद्धार करने के लिए मग्न रहते हैं। नैतान विहाय कृपना मुमुक्ष एको नान्यम तदश्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। तो ये श्लोक वास्तव में प्रहलाद महाराज कह रहे थे। तो वो कहते हैं कि लेकिन ऐसे लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस जगत में हजारों हजारों ऐसे कृपण लोग हैं जिनका जीवन, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कुत्ते और सुअर के भांति हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों की तृप्ति करने में ही लगाया है। जीवन का लक्ष्य क्या है? 5 जो इंद्रिया है उनकी तृप्ति करना, बस ये इन कृपण लोगों ने बनाए रखा है, अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो लोग तो चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मुझे किसकी चिंता है? इन फूल्स एंड रास्कल्स, प्रभुपाद ने अनुवाद किया है उस शब्द का, कृपना का, फूल्स एंड रास्कल्स। यहां मूर्ख लोग हैं जो केवल अपने जीवन का लक्ष्य उन्होंने इंद्रियों की तृप्ति करना ही बनाया है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी मुझे चिंता है, क्योंकि इन लोगों के लिए आपके चरणों का आश्रय लिए बिना दूसरा कोई पर्याय नहीं है। क्योंकि आपके चरण तो एक नाव के समान है, ये संसार तो भव सागर है, सागर में तो एक स्ट्रांग बोट होनी चाहिए, और भगवान के चरण कमलों का आश्रय या शेल्टर लेना मीन्स स्ट्रांग बोट का आश्रय लेना है। तो प्रहलाद कहते हैं, कोई कह सकता है कि आपको भय नहीं लगता ये जगत का? ये जगत में नाना प्रकार के कष्ट है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी आदि है, फिर से माँ के गर्भ में जाना होगा, इतने छोटे से स्थान में 9 महीने रहना होगा, क्यों ये दूसरों की चिंता करते रहना, भागो ना आप। हाँ, जैसे हमें सीट मिलता है मेट्रो में, हम थोड़ी किसी की चिंता करते हैं, कैसे भागते लोग, देखा आपने कभी जाते तो? हाँ, जैसे वो खुलता है तुरंत भागते हैं। लेकिन कहते हैं कि मुझे इन लोगों की चिंता है जो ये लोग फूल्स एंड रास्कल्स हैं। तो इन्होंने प्रहलाद महाराज को कोई पूछ सकता है कि आपको क्यों चिंता नहीं, आप भयभीत नहीं है इस जगत से? कहते नहीं नहीं, मैंने तो एक कला सीखी है, एक आर्ट मेरे पास है, मैं सीक्रेट जानता हूं क्या है, नैवो द्विजय परम दुरतया वैतरण्या स्तद्वीर्य गायम महामृत मग्न चित्तः। वो कहते हैं कि मुझे इस वैतरणी जगत से पार होने का भय नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जो चित्त है, तद्वीर्य गायन, भगवान का जो नाम रूप गुण लीला आदि में बिल्कुल मग्न हो गया है। तो इस सांसारिक चीजों के लिए मेरा हृदय, मेरा मन आदि नहीं है। तो जितना हमारा मन, हमारा चित्त, हृदय आदि हम भौतिक वार्तालाप, भौतिक चीजों में लगाते हैं, उतना ही दुख अनुभव करते हैं, उतनी ही पीड़ा हम अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे चिंता नहीं है। हाँ, तो इसलिए वास्तव में जो भगवान के मान भक्त है उनका ये स्वभाव है। पामर तारिते, जो पतित लोग हैं उनको तारण करना, इस जगत से निकालना, क्योंकि लोग कुएं में गिरे हुए हैं। हाँ, भौतिकतावाद का ये जो कुआं है। हाँ, तो ऐसे महान वैष्णव दूसरों का जो दुख है उसको कम करते। जैसे शिव जी हैं, वैष्णव आनाम यथा शंभु। महादेव कौन है? कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त है। कौन है महादेव? कृष्ण के सर्वत। इसलिए भागवत में श्लोक आता है, निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाली सारी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, उसी प्रकार से वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव में जो विष्णु के भक्त है, कृष्ण के जो भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभु, उसी प्रकार से सारे वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? शंभु है, महादेव है। इसलिए वो हर समय पार्वती के साथ कृष्ण कथा करते, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। कोई उनको तंग करने आता है तो उसको भगा देते हैं, भागो, ये ले लो, पत्नी ले लो, बच्चे ले लो, घर ले लो, धन ले लो, पौधा ले लो, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे क्या करने दो? हरे कृष्ण जोर से लाउडली और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम इनके जीवन से देखते हैं, जो मंदराचल और क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो उसमें क्या निकला था? हलाहल विष, जो सारे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था, लेकिन एक ही व्यक्ति आया जो कृष्ण के मान भक्त थे, शंभु जी ने, महादेव ने कहा कि मैं इसको धारण करता हूँ, पीता हूँ। सारे जीवों के कष्टों को उन्होंने निवारण किया, धारण किया, नीलकंठ बने। उनके कंठ में जाने से क्या हो गया? नीलकंठ। और क्यों नहीं कुछ प्रभाव हुआ? क्योंकि उनका जो कंठ है हर समय कृष्ण के नामों से भरा रहता है। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे, शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? चार मुख हैं, चार जिह्वा हैं, कितने कान हैं? आठ कान। क्या कर रहे हैं वो सारे जिह्वा से और कानों से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चार जिह्वा से वो गा रहे हैं, आठ कानों से सुन रहे हैं। ब्रह्मा इतना आनंदित है। उसी प्रकार से शास्त्र आगे कहते हैं पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे। पांच मुखों से महादेव, शिव जी के पांच मुख होते हैं, उनसे वो भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान के जो मान भक्त हैं, हाँ, उनका ये स्वभाव है, हाँ, करुणा दया, क्योंकि ये गुण किसमें है? कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं तो उनका प्रणाम मंत्र है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। सबसे पहला शब्द आता है हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण करुणा या दया के सागर है, और ऐसा सागर जिसकी गहराई का कोई नाप नहीं सकते, और ऐसा सागर की जिसका कोई शोर नहीं है, क्या कहेंगे, तट नहीं है, अनलिमिटेड, इसको करुणा का सागर कहा गया है, दया का सागर। तो ये जो दया कृष्ण के अंदर है, कृष्ण बहुत अधिक कष्ट महसूस करते हैं अपने हृदय में जब वो देखते हैं। गीता में यही चीज कही कृष्ण ने, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, पांच इंद्रिया और छठा इंद्रिया मन, इसको लेकर बेचारा जीवन भर संघर्ष कर रहा है। भगवान कहते हैं संघर्ष कर रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि भगवान पिता के समान है। गीता में कृष्ण कहते पिता महर्ष जगतो, मैं पिता हूं, अहम बीज प्रदा पिता, कृष्ण कहते ना, तो वो वास्तव में ऐसे पिता हैं जो चाहते हैं कि हम वहां पर जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, लेकिन ना हम बिल्कुल हटीला बच्चा होता है ना वैसे है, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण वास्तव में दया के सागर है, और इस दया को प्रदर्शित करने के लिए हाँ कृष्ण स्वयं आते हैं, इस जगत में अवतरित होते हैं। पतित पावन हेतु तव अवतार, भगवान आते पतितों का उद्धार करने। भगवान भी आते हैं, भगवान तीन प्रकार से हमें इस जगत से निकालना चाहते हैं। पहले तो वो स्वयं आते हैं, और एक अवतार ने नाना प्रकार के अवतारों से आते हैं, ना राम नरसिंह वराह कुर्मा वामन आदि, और अपने भक्तों को भेजते हैं। तव निज जन कौन महाजने पाठाया दिला तुम्हें, अपने जो प्रिय भक्त है उनको वैकुंठ से यहाँ भेजते हैं कि जाओ इस संसार में सड़े हुए जो संघर्ष रत लोगों को वापस ले आओ आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जा, किसी भी प्रकार का कुंठा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं आते हैं, दूसरा अपने भक्तों को भेजते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि दो चीजों से हा? और तीसरी चीज क्या है, शास्त्र, क्या है तीसरी चीज, इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा, कृष्ण अपने धाम में चले गए धर्म ज्ञान आदि अपने साथ, लेकिन उन्होंने क्या रखा, कलो नष्ट दृशामेश पुराणार को आधुनो दे, तो भगवान ने अपने जाने के बाद इस संसार में शास्त्र हमें दिए, भगवद गीता और श्रीमद भागवतम आदि। ये टॉर्च लाइट है, कलयुग तो अंधकार का युग है, यहाँ टॉर्च लाइट क्या है, यह है ग्रंथ है श्रीमद भागवतम और भगवद गीता। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया से जो मुग्ध जीव है उनको भगवत ज्ञान कैसे हो सकता है, असंभव है। जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण, और जीवों के ऊपर केवल कृपा करने के लिए कृष्ण ने शास्त्र या ग्रंथ या बुक्स हमें दी है, और इन ग्रंथों का इन बुक्स का कोई आश्रय लेता है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु शास्त्र कृपा या यदि कृष्णोन्मुख है, कि साधु या भक्त का संग और शास्त्रों के संग में कोई आता है ग्रंथ के, तो वो कृष्ण के उन्मुख हो जाता है। अभी हम क्या है, विमुख है। हाँ प्रभुपाद कहा करते थे कि जो इंडियंस है भारतीय है वो भगवान के बहुत नजदीक है, लेकिन उन्होंने कृष्ण की ओर अपनी पीठ की है और फेस कहा किया है अमेरिका की ओर, और अमेरिकन बहुत दूर है लेकिन उन्होंने फेस कहा किया है कृष्ण की ओर, हम कितने अभागी हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं सही जीवन स्तरे माया तहारे छाड़ाए, जो व्यक्ति दो चीजों के संपर्क में आता है भगवान के भक्त और ये जो ग्रंथ है, तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार के जो चक्कर है या माया का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है और भगवत सेवा में भी लग जाता है। तो इसलिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, विशेष रूप से आपने देखा कितने सारे बॉक्स है यहाँ, देख रहे हैं आपको किस चीज के बॉक्स है, यह भगवत गीता आदि के हैं। तो वास्तव में ये कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा है, क्योंकि आप देखते हैं आपने सुना होगा श्रील प्रभुपाद अपने 70 साल की आयु में अमेरिका जाते हैं, चाहे वो अपने गृहस्थ जीवन में थे तभी भी वो ग्रंथों का प्रकाशन करते थे, क्योंकि जानते हैं कि ये जो ग्रंथ है इतने शक्तिशाली हैं कि जो हजारों हजारों लोगों का जो जीवन है उन्होंने परिवर्तित किया है। जब वो श्रील प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए जलदूत जहाज जो फ्री में जा रहे थे, तो उनके पास कुछ नहीं था, दो ही चीजें थी, एक 40 रुपए वो भारत से ले गए थे, और जब एक साल के बाद आए तो उनके जेब में कितने रुपए थे, वही इंडियन 40 रुपए वापस लेके आए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उतरे तो उनको वहां जाना था, चांदनी चौक में एक टेम्पल हुआ करता था, तो वो 40 रुपए उन्होंने टैक्सी वाले को दिए थे, भारत से केवल 40 रुपए के साथ व्यक्ति अमेरिका गया था 70 साल की आयु में कृष्ण की सेवा के लिए। और दूसरी चीज उनके पास थी ग्रंथ थे, भागवतम, जो भगवत गीता है, भागवतम की तीन किताबें उनके पास थी केवल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो इतने प्रभावशाली कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका चले गए तब उन्होंने इन्हीं के माध्यम से सारे विश्व में परिवर्तन लाया। उन्होंने प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो ग्रंथ है ये साक्षात कृष्ण है, और उन्होंने इतनी अधिक भगवत सेवा की कि उसका जो प्रभाव है पूरे विश्व में पड़ा। जो भी व्यक्ति इन ग्रंथों के संपर्क में आया वो व्यक्ति का जो जीवन है परिवर्तित हो गया। ये एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तो एक अमेरिकन लेडी उनके पास आई, एक स्त्री, और उन्होंने कहा कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है, कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा गीता तो 900 प्रकार की है। कितनी? 900 प्रकार की जो गीताएं उस समय थी। भगवान ने तो संस्कृत में बोल दिया उपदेश, लेकिन आगे चलकर ऐसे ऐसे लोग जिनका थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान हो गया उन्होंने उसकी टीका व्याख्या आदि करना शुरू कर दी, बुक छापकर बांटने लगे कि भगवत गीता। लेकिन ऐसे 900 प्रकार की गीताएं होने के बावजूद भी कोई भी व्यक्ति सिंसियर गंभीर कृष्ण का भक्त नहीं बना। गीता का उद्देश्य क्या है? ये जानना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, हमारे बीच में क्या संबंध है, और कैसे उनको प्रसन्न किया जाए, कैसे उनके शरणागत हुआ जाए। ये आज तक नहीं हुआ। तो प्रभुपाद कहा करते थे जब उन्होंने ये भगवत गीता प्रेजेंट की, भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज, तो देखा कि पूरे विश्व में चाहे वो कोई भी हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, रशियन हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, वो भगवान का भक्त बन रहा था। वो समझ रहा था कि अपने जीवन में किस प्रकार से सारे कार्य करते हुए भगवत सेवा में लगा जा सकता है। इसी कारण फलेन परिचयते, प्रभुपाद क्या कहते हैं, फलेन परिचयते, कि 10 आम के पेड़ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आम का पेड़ बहुत अच्छा है, जब आप उसके फल को खाओगे। तो इतनी प्रकार की गीताएं हैं। आज तो कोई भगवत सेवा नहीं कर सका, भगवत भक्त नहीं बना, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जैसे ये ग्रंथ दिए, चाहे वो अमेरिकन हो, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, हर कोई कृष्ण भक्ति में अपना जीवन लगा रहा था इन ग्रंथों के माध्यम से। क्यों? प्रभुपाद ने कहा कि मैंने ये जो ज्ञान दिया है ये इसमें मेरा एक ही खासियत है कि मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया ना कुछ निकाला। जैसे कृष्ण ने कहा वैसे मैंने लोगों के सामने रखा। पोस्टमैन का कार्य, पोस्टमैन गुरु का कार्य क्या है? पोस्टमैन के समान। भगवान का जो संदेश है उसी को यथारूप सामने रखना। पोस्टमैन कुछ ऐड नहीं करता लेटर में या कुछ निकालता नहीं, जैसे आया वैसे आगे पहुंचाता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने कार्य किया, और 11 साल में उन्होंने 108 मंदिर बनाए, पूरे वर्ल्ड में हजारों हजारों भक्त बनाए। तो ये जो ग्रंथ है इतने शक्तिशाली है कि ये ग्रंथ जिसके पास भी गया उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति आ गई। तो वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करने का ये हमारे पास सर्वोच्च मौका है, क्योंकि कृष्ण को तो आप डायरेक्ट प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्ण देखते हैं कि मेरा भक्त प्रसन्न है, कौन से भक्त ने उसको प्रसन्न किया, कृष्ण अपनी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं। तो इस प्रकार से वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, इसको पूरे वर्ल्ड में बुक मैराथन मनाता है। श्रील प्रभुपाद ने कई सारे ग्रंथ लिखे, और ये इसलिए भी क्योंकि इसी महीने अभी जो दिसंबर मंथ शुरू हो रहा है, इसी महीने भगवान ने भगवद गीता को बोला था, अर्जुन को उपदेश दिया था मोक्षदा एकादशी के दिन। तो इसलिए ये महीना बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है कृपा प्राप्त करने के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में भक्त लोग ये करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बुक्स को देते हैं भगवद गीता लोगों के पास। हजारों बहाने होते हैं भगवद गीता न लेने के, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा है तो कृष्ण हमें सफलता प्रदान करते हैं, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली ग्रंथ हैं। विदेशों में देखा गया हजारों हजारों लोग भक्त बने हैं केवल ग्रंथों को पढ़कर ही। भारत में तो सरल है, भंडारा शुरू कर दो प्रवचन में हजार लोग बैठ जाएंगे, है कि नहीं? बैनर्स लगा दो, अनाउंसमेंट करो, वहां ऐसे नहीं, वहां तो आपके फिलॉसफी दर्शन को पढ़ेंगे समझेंगे तब वो स्वीकार करेंगे प्रॉपरली। हाँ तो वहां कई ऐसी घटनाएं हैं। एक बार एक हमारा भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, भगवद गीता आदि ग्रंथ बांट रहा था। ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिए गए इतने पावरफुल है कि एक वहां विदेशों में बहुत कठिन है, लोग कई बार लेते हैं और फेंक देते हैं। तो एक बुक एक भक्त बांट रहा था, किसी को उन्होंने दिया, उन्होंने कुछ लक्ष्मी दिया डोनेशन, और आगे जाके उस व्यक्ति ने डस्टबिन में फेंका। कहां फेंका? डस्टबिन में। तो डस्टबिन जब गिरा हुआ था तो ये सामने किसी का घर था, उनका कुत्ता बाहर आया, उस कुत्ते ने उस बुक को मुंह में लिया और वो अपने मालिक के उधर गया, दरवाजे में गया, और बुक को कहां डाला उसने? गेट पर। तो जो घर का मालिक है उसने उस बुक को उठाया और अपने पास रखा, पढ़ना शुरू किया उसने। केवल क्या गया? पढ़ना शुरू किया। और एक 10 दिन के बाद ही वो हरे कृष्णा टेम्पल ढूंढने लगा कि कहां है वो हरे कृष्णा टेम्पल, मुझे समझना है, जानना है। वो स्वयं ही बता रहा था कि किस प्रकार से मैं भगवान की भक्ति में आया। तो इस प्रकार से ऐसे हजारों घटनाएं हैं। हाँ, समय तो हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इन ग्रंथों का जो वितरण है वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान को प्रसन्न करने का ये सर्वोत्तम मौका है कि इन ग्रंथों के वितरण से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान के इन ग्रंथों के संपर्क में आता है जो भगवान से अभिन्न है भगवद गीता, तो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना क्या है? निश्चित है। तो इसलिए पूरे विश्व में इस महीने भगवद गीता का वितरण किया जाता है, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का। तो आप सब प्रयास कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को इंस्पायर करिए और उनको इस सेवा में जोड़िए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक कोट में वो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का शॉर्टकट क्या है। वो कहते हैं, दिस इज द प्राइस यू पे फॉर गेटिंग कृष्णा, यूर इंटेंस इगरनेस टू गेट कृष्णा। हाउ डू यू गेट कृष्णा? बाई गिविंग कृष्णा टू अदर्स, दैट्स हाउ यू गेट कृष्णा। दिस इज द शॉर्टकट, द मोर यू गिव कृष्णा टू अदर्स द मोर यू गेट कृष्णा। क्या है शॉर्टकट? कि जितना अधिक आप कृष्ण को दूसरों को देने का प्रयास करो, क्या करो? दूसरों को दो कृष्ण को, कृष्ण के संपर्क में लाओ लोगों को, उतने ही अधिक कृष्ण आपके हो जाएंगे, उतने ही अधिक आप कृष्ण के नजदीक जाओगे, उतने ही अधिक आप कृष्ण की कृपा प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान भगवद गीता में यही कहते हैं। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान का जो वितरण करता है हे अर्जुन, पूरी गीता के आखिरी में ये दो श्लोक बोले भगवान ने कि ये जो ज्ञान है इसका जो वितरण करता है वो व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा सेवक भगवान कहते कोई मुझे इस सेवा जो करता है, इस प्रकार की सेवा, उससे अधिक प्रिय सेवक मुझे इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी है, हमें इच्छा करनी चाहिए भगवत सेवा की, तो हम कृष्ण की जो कृपा है वो अनुकूल कर सकते हैं और बहुत तीव्रता से भगवान की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप रेगुलर इस संडे प्रोग्राम में आते रहिए और अपने साथ और व्यक्ति को पकड़ के लाइए। और क्या है कि इन ग्रंथों का वितरण करें जाकर किसी न किसी प्रकार से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण